गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। जंगली बाघ शेर या हाथी को पालना बहुत सरल है, पानी या आग के ऊपर चलना बहुत सरल है, लेकिन जब तक मनुष्य को गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए हृदय की तमन्ना नहीं जगती, तब तक सद्गुरु के चरण कमलों की शरण में जाना मुश्किल है। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु को संपूर्ण बिन शर्ती शरणागति करना गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए निश्चित मार्ग है। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। अगर आपको सचमुच ईश्वर की आवश्यकता हो तो सांसारिक सुख भोगों से दूर रहो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें तो सचमुच में अंध है। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच में बहरे हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। श्रद्धा भक्ति और तत्परता के फूलों से अपने सद्गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। ईश्वर कृपा गुरु का स्वरूप धारण करती है। गुरु के दर्शन ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। आत्मवेत्ता गुरु के संग के प्रभाव से अपना जीवन संग्राम सरल बन जाएगा। सद्गुरु शिष्य पर सतत आशीर्वाद बरसाते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु जगत गुरु है, परम गुरु है। कल हमने अथर्व वेद में कहे हुए सद्गुरु के 6 लक्षणों के बारे में सुना था। उसमें हमने सद्गुरु के मृत्यु रूप, वरुण रूप, सोम रूप, औषधि रूप, पय रूप और मेघ रूप स्वरूप होते हैं। सद्गुरु का चौथा रूप है औषधि रूप। जैसे औषधि लेने से रोग मिटने लगता है, वैसे ही सद्गुरु की शरण लेने वाले शिष्य को उनके द्वारा सिखाई गई जीवन जीने की युक्ति से शरीर मन और बुद्धि के रोगों से सहज में छुटकारा मिलने लगता है। गुरु कृपा से वह काम क्रोध लोभ मोह आदि सूक्ष्म व्याधियों पर जिन्हें बहुत वर्षों से कठिन परिश्रम के बाद भी जीतना मुश्किल होता है, विजय पाने में सक्षम होने लगता है। जब शिष्य सद्गुरु के पूर्ण शरणागत होता है तब वह जन्म मरण के महारोग पर भी विजय प्राप्त करके स्वस्थ अर्थात आत्मस्थ हो जाता है। फिर शरीर में कोई व्याधि हो भी जाए तो भी वह उस तक नहीं पहुंच सकती। सद्गुरु का पांचवा रूप है पय रूप। यह सद्गुरु का पंचम रूप कहा गया है। पय अर्थात दूध। दूध परम सात्विक आहार के रूप में गौरवान्वित किया गया है। जैसे नवजात शिशु के लिए उसकी मां का दूध तथा बड़ों के लिए देशी गाय का दूध सुपाच्य बलप्रद और पूर्ण आहार माना जाता है, वैसे ही साधकों के लिए सद्गुरु का वचनामृत सुबोध आत्मबल एवं शक्ति प्रदायक तथा पूर्ण ज्ञान संपन्न पय है। यह साधकों का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सर्वांगीण पोषण करता है। गाय दिन भर अलग अलग वनस्पतियों को चरती है पचाती है और उसके पोषक व औषधीय गुणों को ग्रहण करके सार रूप मधुर दूध का निर्माण कर अपने बछड़ों को पिला देती है। वैसे ही पूज्य बापूजी जैसे ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु कितने ही उच्च कोटि के महापुरुषों के अनुभवों सच्छास्त्रों एवं अपने अनुभवी अनुभवों का सार निकालकर अपनी दिव्य अमृतवाणी व कृपा दृष्टि के द्वारा उसे जनमानस को सहज में ही पिला देते हैं। जैसे दुग्धों में गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही ज्ञानों में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह आत्मज्ञान आत्मलाभ आत्मसुख आत्म अनुभव मानव जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। यह सभी ज्ञानों लाभों सुखों एवं अनुभवों की चरम सीमा है। इसके बिना मानव जन्म सफल नहीं माना जाता है। सद्गुरु का छठा रूप है मेघ रूप। सद्गुरु जब मेघ रूप होकर शिष्य के हृदय में बरसते हैं तब शिष्य परमात्म रस से तृप्त होने लगता है। जैसे गर्मी में तपी हुई भूमि पर मेघ के बरसने से उसमें शीतलता आ जाती है, हरियाली आने लगती है और वह भूमि अन्न फल फूल आदि उत्पन्न करके सारे संसार को तृप्ति प्रदान करती है, वैसे ही सद्गुरु संसार ताप से तपे हुए शिष्य के अंतःकरण में मेघ रूप होकर बरसते हैं और शिष्य अंतरात्मा की शांति प्राप्त करता है। उसका जीवन अद्वैत ज्ञान की मीठी सुगंध एवं अद्वैत प्रेम के माधुर्य रस से हरा भरा होने लगता है। वह परमात्म ज्ञान से स्वयं को तृप्त होता देखता है, साथ ही संसार के जीवों की भी उससे तृप्ति मिलने लगती है। जैसे सागर का खारा पानी जब मेघ रूप होकर बरसता है तभी पीने योग्य बनता है, वैसे ही वेद रूपी सागर में स्थित ज्ञान रूपी जल जब सद्गुरु रूपी मेघ द्वारा बरसता है तब वह मनुष्यों के लिए सुगम सुपाच्य हो पाता है और उससे शिष्य साधक श्रोता आत्मतृप्ति का अनुभव करता है।